ओम शांति। तो हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी, यूं तो ब्राह्मण परिवार में बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती है, स्वयं भगवान ने आपको बहुत सुंदर वरदानों से सजाया है, जिसमें से दो मुख्य वरदानों का जिक्र करूंगी। एक, आप हर की पौड़ी हैं, और दूसरा, आपकी जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती सदा विराजमान रहेगी। ऐसे सुंदर वरदानों से स्वयं भगवान ने जिन्हें सजाया है, वे हमारे यज्ञ में बाल्यकाल से ही जुड़ी हुई है। बचपन में 12 वर्ष की उम्र से बाबा के पास आए, यूं कहें कि अलौकिक आपका जन्म ब्रह्मा बाबा के गोद में ही हुआ है। मुंबई से आप बाबा के निकले नूर हैं, नूर क्या कहें, कोई नूर हैं। आप वर्तमान में राजयोग शिविर के निर्देशिका हैं, राजयोग वरिष्ठ शिक्षिका हैं, एजुकेशन विंग के आप उपाध्यक्षा हैं। जब मधुबन पांडव भवन में विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम चलते हैं, आप उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। भट्टियों की सीजन चालू होती है तो भट्टियां कोऑर्डिनेट करते हैं, और पूरे विश्व भर से आपको आए दिन निमंत्रण मिलते रहते हैं। तो बैलेंस रखते हुए कि यहाँ वालों को भी लाभ मिले और पूरे विश्व वालों को भी लाभ मिले, टूर भी करते रहते हैं। और मुख्य रूप से जो दीदी की विशेषता हम देखते हैं कि आज सभी दादियां लगभग अव्यक्त हो चली है, सिवाय एक दादी के। सिर्फ एक ही दादी आज हमारे बीच में है, लेकिन लगभग सभी दादियों की पालना अपने प्राप्त की है, और उस पालना का रिटर्न आप आने वाले ब्राह्मण भाई बहनों की वैसी ही दादियों सम पालना देकर, जैसे कि दादियों की पालना का रिटर्न देते हैं। भल दादियां नहीं है, लेकिन आपकी पालना से वो दादियों की रिक्तता आप कभी किसी को महसूस होने नहीं देते हैं। तो इस कैंपस में मुख्य रूप से आप जब भी कोई आते हैं तो भरपूर पालना करते हैं। मम्मा बाबा से जो पालना ली है, दादियों से जो पालना ली है, उसका सभी को अनुभव कराते हैं, और बहुत ही सरल, बहुत ही वाणी में मिठास, हर बोल में अपनापन, जिस कारण से हर कोई बहुत इजीली आपके पास आकर मिलता है और स्वयं को आपके साथ जोड़कर बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता है। आपके जीवन से जो हम देखते हैं, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता की त्रिवेणी सरिता सदा ही बहती रहती है। और भी कई विशेष झलकियां है, किसका वर्णन करें और किसका नहीं, आप इन 3-4 दिनों में स्वयं ही अनुभव कर लेना। तो आज अब हम सुनते हैं दीदी से भट्टी का लक्ष्य, महसूसता द्वारा संपूर्णता। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी हमें पढ़ा के गए 3 बार ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, ये 3 प्रश्न हमें नशा भी दिलाते हैं और बाबा का वो सुंदर अनुभव भी कराते हैं। तो मधुबन तपो भूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, जितनी महिमा गाएं मधुबन की उतनी कम है। तो ऐसे भूमि पर आप सभी बठ्ठी करने आए हो, तो सबसे पहले प्यारे बाप दादा सब दादियाँ और हमारे तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको पांडव भवन में बठ्ठी करने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, हाँ क्यों लगी हुई है, पांडव भवन में बठ्ठी करनी है, पांडव भवन में बठ्ठी करनी है। आपका भी कितने समय के बाद नंबर आया, चार साल के बाद नंबर आया, देखो तो नंबर आ ही गया, तो उसके लिए भी कहेंगे भाग्यशाली हो, तो अपने लिए भी ताली बजाओ। क्योंकि मधुबन तो वैसे सभी है, चाहे पांडव भवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे शांतिवन, चाहे अभी आनंद सरोवर, मान सरोवर, अब चारों ओर सरोवर है। तो वो तो है ही, लेकिन पांडव भवन की जो विशेषता है वो तो और कहीं नहीं है। कौन सी वो विशेषता है? ब्रह्मा बाबा के चार धाम है ना, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, बाबा का हिस्ट्री हॉल और बाबा का शांति स्तंभ। ये ब्रह्मा बाबा के चार धाम हैं, जहाँ ब्रह्मा बाबा दिन भर विचरण करते थे। कमरे में तो रहते ही थे, पर दिन में बाबा झोपड़ी में आकर बैठते थे, किससे इंडिविजुअल व्यक्तिगत बातचीत करनी होती थी तो यहाँ करते थे, ग्रुप से मिलते थे तो कमरे में मिलते थे, और फिर सवेरे की मुरली हिस्ट्री हॉल भी चलाते थे, और जो अभी शांति स्तंभ है वहाँ बाबा का ये प्लेग्राउंड था, जहाँ बाबा क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, आउटडोर गेम्स बाबा बच्चों से खेलते थे। तो ये ब्रह्मा बाबा के चार धाम हैं, और अभी हम इन चार धामों में क्या अनुभव करते हैं, जब बाबा के कमरे में जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से कैसे हम बच्चों से मिलते थे, मात पिता के रूप में बच्चों से मिलते थे, कितना समीप का संबंध था। बाबा भी नीचे बैठते थे, गद्दी जो बनी हुई है वहीं पलंग पर तो बाबा विश्राम करते थे, लेकिन गद्दी पर बैठ करके नीचे मिलते थे सबसे, और अनुभव करते थे सभी भाई बहने कि हम अपने पारलौकिक मात पिता से मिल रहे हैं। बाबा वरदानों से झोली भरते थे। तो मात पिता कैसे है, शिव बाबा ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा माँ और शिव बाप के रूप में हम अनुभव करते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में यही कहा, कैसे परमात्मा रचना रचते हैं, नहीं ऐसे नहीं कि सृष्टि है ही नहीं और फिर नए से रचते हैं, लेकिन ये साइकिल है, चक्र है, तो पुराने से नई सृष्टि बनती है, और नई सृष्टि के लिए ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश करके नई रचना रचते हैं, और हम सब ब्रह्मा की मुख वंशावली आदि रचना है, पूर्वज है, सबके पूज्य है, बीज के साथ है। तो ये नशा हमको बाबा के कमरे में अनुभव होता है और शिव बाबा ब्रह्मातन में कैसे सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं और हम भी बाबा के साथ विश्व को सकाश दे रहे हैं, ये हम वहाँ बाबा के कमरे में अनुभव कर सकते हैं। मात पिता के साथ हम बच्चे उनके समान बनने वाले। फिर बाबा की झोपड़ी में आते हैं तो झोपड़ी में तो बाबा रूरियान करते थे, व्यक्तिगत रूप में भी मिलते थे, बच्चे बाबा को अपने दिल का हाल बताते थे, जो भी अंदर की बातें हैं बाबा के सामने खोलते थे, तो ऐसे एक सखा का रूप बाबा का अनुभव होता था। जैसे सखा से कैसे फ्रेंडशिप होती है, कितने हल्के रहते हैं, तो उस प्रकार से बाबा के साथ सखा का अनुभव हम बाबा की झोपड़ी में कर सकते हैं। जो भी दिल की बातें वो बाबा को सुनाओ, सुनाकर हल्के हो जाओ। बाबा कहते हैं मुझे बोझ दे दो, अपनी कमियां कमजोरियां जो भी है, एक है कमी, दूसरी है कमजोरी, तीसरी है खामी, ये तीनों ही है, थोड़ा अंतर है बाकी, तो जो भी कमियां हैं जो हमें भरनी है और जो कमजोरियां हैं वो निकालनी है और खामियां जो है वो ख़त्म करनी है, वो बाबा को बता करके हल्के हो जाओ और बाबा से शक्ति प्राप्त करो। तो ये झोपड़ी में बाबा को खुदा दोस्त के रूप में देखो और दिल की बातें बाबा को सुना करके हल्के हो जाओ, बोझ बाबा को दे दो। फिर हिस्ट्री हॉल में आओ तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर रूप में देखो, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में पढ़ाते थे, तो अनुभव होता है शिव बाबा वर्ल्ड टीचर के रूप में सारे विश्व को पढ़ाते हैं। भले कितने भी भाई बहने बैठे रहते थे, क्योंकि हर वक्त तो पार्टियां नहीं आती थी, कभी तो केवल मधुबन निवासी होते थे और वो भी कितने होते थे बाबा के समय पर, 15-20 बस। लेकिन बाबा की जो मुरली चलती थी वो तो विशाल रूप में, जैसे बाबा कितनी बड़ी सभा को संबोधन कर रहे हैं। तो कई बाबा से पूछते थे, बाबा आपने तो आज ऐसे सुनाया जैसे कि पता नहीं कितने बैठे हैं आपके सामने। हाँ, जैसे थोड़ों के आगे जब बातचीत करते तो कैसे बोल निकलते, और हजारों के बीच पे कोई बातचीत कोई बोले तो फर्क पड़ जाता है ना। तो बाबा तो कैसे वो शक्ति रूप बन करके बाबा सुनाते थे। तो तभी जब बाबा से ये पूछते थे, बाबा आपने तो आज ऐसे सुनाया जैसे पता नहीं कितने बैठे थे हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा कहते थे बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा तो उन बच्चों को भी देखते हैं जो आने वाले हैं, बाबा उन बच्चों का भी आह्वान कर रहे हैं, बच्चे बहुत आएंगे बहुत आएंगे और बाबा की मुरली सुनेंगे। तो बाबा उस रूप से सुनाते थे क्योंकि बहुत बच्चे ये सुनेंगे, बहुत बच्चे अनुभव करेंगे। तो वही अभी हम देख रहे हैं बाबा की मुरली से कितना सुंदर अनुभव सब बच्चे करते हैं। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर के रूप में देखो, बाबा के कमरे में मात पिता के रूप में देखो, और झोपड़ी में सखा के रूप में देखो, हिस्ट्री हॉल में टीचर के रूप में देखो, और फिर शांति स्तंभ पर जाते हैं जहाँ ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियाँ दी, यही कहेंगे ना, बोले अंतिम संस्कार वहाँ किए गए, वो समाधि शब्द यूज करते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन ही होम दिया, सेवा में सब हड्डियाँ लगाई, अंतिम घड़ी तक बाबा ने सेवा की, अंतिम घड़ी तक सेवा की। आप सोचो मुरली चला करके आए कमरे में रात को 9:15 और कैसे विदाई ली। तो देखो जो अंतिम घड़ी तक सेवा की और विदाई लेकर बाबा से बाबा ने कैसे छुट्टी ली। तो देखते हैं कि वो शांति स्तंभ ऐसा अनुभव कराता है जैसे सतगुरु का पाठ। सतगुरु हमें पावन बना रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं, संपूर्ण बना रहे हैं, तो वो संपूर्णता का स्वरूप शांति स्तंभ है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण होके सूक्ष्म वतन वासी हुए। तो अंतिम समय का भी जब बाबा से पूछते थे वतन में, तो संदेशियां जाकर बाबा को देखती थी, तो बाबा से पूछती थी, बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी, अंतिम स्थिति। तो बाबा बताते थे कि तीन प्रकार की खींच थी, खींच तीन प्रकार की खींच। पहली खींच थी ये अंतिम जो हिसाब किताब शरीर का, वो चुकतू हो रहा था, हार्ट फेली था, यही कहते हैं, तो अंतिम हिसाब किताब चुकतू हो रहा था, मानो कि बाबा से वो हिसाब किताब छुट्टी ले रहा था, पूरा हुआ, बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर रहे थे, तो शरीर का अंतिम हिसाब किताब खत्म और बाबा न्यारे होते गए, न्यारे होते गए। फिर दूसरी खींच थी जो बाबा का अव्यक्त स्वरूप वतन में है, वो संपूर्ण स्वरूप बाबा को खींच रहा था, अभी आपको ये बनना है, ये आपका ही संपूर्ण स्वरूप है, अभी आपको ये संपूर्ण ताका चोला धारण करना है, फरिश्ता रूप बनना है। तो वो फरिश्ता स्वरूप जो बाबा का वतन में था, वो निमंत्रण दे रहा था, वो आह्वान कर रहा था, तो वो खींच थी। और तीसरा शिव बाबा अपने तरफ खींच रहा था कि अभी आपको हमारा पक्का साथी बनना है, कंबाइंड रूप, बाप दादा कंबाइंड रूप में बनना है, क्योंकि मिल करके कैसे इस विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो एक तरफ संपूर्ण ताकि खींच थी, दूसरी तरफ शिव बाबा की खींच थी, तीसरी तरफ ये अंतिम हिसाब किताब शरीर के चुकतू हो रहे थे। और बाबा अव्यक्त हुए, बाबा अशरीरी बन गए। तो देखो यही बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना है। बाबा की जो लास्ट स्थिति थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी, न्यारे प्यारे होते गए, न्यारे प्यारे। पहले तो बाबा एक एक का सुनते थे, एक एक की जो बात है वो ध्यान से सुनते थे, कुछ राय देते थे, बहुत कुछ था, लेकिन धीरे धीरे बाबा को देखा कि कैसे न्यारे होते जा रहे हैं, न्यारे होते जा रहे, सुनते हुए भी जैसे न्यारे हैं, है नहीं है समान, यहाँ है और यहाँ नहीं है, ऐसे अनुभव होता था। तो वो स्थिति थी बाबा की अंतिम दिनों में। तो महसूस हुआ कि जैसे बाबा उपराम होते जा रहे, उपराम होते जा रहे, और बाबा के अंतिम समय से 6 महीना पहले बाबा की यही वाणी में आता था कि बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है, सारे विश्व को शांति की सकाश देनी है। जब माउंट आबू में आना हुआ तभी भी शिव बाबा का यही संकेत था कि अभी पहाड़ पर जाओ जहाँ से विश्व को आप शांति देंगे। तो ये माउंट आबू का पहाड़ जहाँ से विश्व को शांति देने का कार्य हो रहा है, तो इसीलिए शांति स्तंभ है। तो तुम्हें शांति स्तंभ बनना है, तुम्हें पवित्रता स्तंभ बनना है, शक्ति स्तंभ बनना है और ज्ञान स्तंभ बनना है। तो जैसे बाबा ये कहते थे तो यही शब्द थे जिसके आधार पर ये शांति स्तंभ बनाया गया। तो हम देखते हैं शांति स्तंभ पर जाते ही लगता है कि हम ऐसे बेहद में आ गए हैं और ब्रह्मा बाप समान अपना सब कुछ स्वाहा करके बाप समान बन करके उड़ना है। तो सतगुरु हमें पावन बनाने आए हैं ये अनुभव करना है। जब ज्ञान सरोवर बना तो उस समय बाबा से पूछा गया कि बाबा हम वहाँ पर एक शांति स्तंभ बनाएं, बाबा ने कहा नहीं, शांति स्तंभ केवल पांडव भवन में ही होगा क्योंकि वही ओरिजिनल स्थान है। भले सेंटरों पर या रिट्रीट प्लेसेस पर चार धाम बनाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो मेन है वो तो पांडव भवन है। तो आप ऐसे स्थान पर भट्ठी करने आयो, तो इन चार धामों को आप ऐसे रोज आप यहाँ यात्रा करना, चार धाम की यात्रा अवश्य करना। आपको समय भी दिया गया है कि शाम को 4:30 या 4 से 5 ये चार धाम की यात्रा करना, सवेरे चार धाम की यात्रा करना, बाबा को पत्र लिखना। तो ये आप कर सकते हैं इन चार धामों में विचरण करके, मौन व्रत धारण करके और कुछ बुद्धि में नहीं, ये आपकी तपस्या होगी। और दूसरा फिर जैसे बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना है महसूसता की शक्ति से, ये थीम रखी गई है। क्योंकि महसूसता क्या महसूसता है, दो प्रकार की महसूसता है। एक महसूसता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जो हमें निकालनी है, उसकी भी महसूसता होनी चाहिए। दुनिया में हम देखते ना किनको कहो भाई ये तुम्हारी कमी है कमजोरी है ये निकालो, तो कई तो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होते, क्योंकि ईगो है अभिमान है। तो जहाँ अभिमान होता है वहाँ वो अपनी कमी कहाँ स्वीकार करेंगे और ये दूसरों की कमी निकालेंगे। जिसको आज की दुनिया में शब्द यूज करते हैं ब्लेम गेम, दूसरों को दोषी बनाना, दूसरों को है कमजोरी अपनी पर अपनी भूल छिपाने के लिए दूसरों को दोषी बनाते, इसके कारण भाई गुस्सा क्यों किया, इसने गुस्सा दिलाया। अरे भाई उसने भले दिलाया तो मत दो ना, जरूरी है कि तुमको गुस्सा करना ही और उसने दिलाया तो मत करो, जरूरी है कि करना ही है क्योंकि उसने दिलाया, उसने मुझे ऐसे कहा ना इसीलिए मुझे दुख हुआ, उसने ये किया ना तभी हुआ। तो बाबा कहते ये दूसरों पर दोष मत धरो, आप जो करते हो वो आप ही उसके मालिक हो, आप ही उसके जिम्मेदार हो, दूसरे को दोष मत दो। अगर हम एक गुना दूसरे को दोष देते हैं तो 3 गुना दोष तो किसका है, हमारा है। इसीलिए 3 गुना मैं दोषी हूँ ये महसूसता होनी चाहिए। और दूसरे प्रकार की महसूसता है जो बाबा हमें स्वमान देते हैं, उन स्वमानों की महसूसता। क्योंकि ज्ञान सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट सुना दो आज बाबा ने ये कहा ये कहा ये कहा ये कहा, चलो सारा दिन ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करो, अच्छी बात है, और बातें बुद्धि में आने की बजाय ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करो। कई भाई बहनों को हम देखते हैं पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, जब आपस में मिलेंगे तो सबसे पहला यही प्रश्न करेंगे आज बाबा का स्लोगन क्या था, मुरली का स्लोगन क्या था, हाँ याद ही नहीं, मुरली तो सुनी, आज वरदान क्या था पता नहीं भूल गया, आज हेडिंग क्या थी, दादी गुलजार भी यही कहती थी, और सा और कुछ भी आपको बातें याद न रहे लेकिन वो हेडिंग और फिर जो प्रश्न उत्तर और वरदान और स्लोगन कम से कम ये तो याद रहे, ये तो भूले नहीं। अब जैसे आज की मुरली सबने सुनी होगी, तो प्रश्न था वो क्या था, क्या प्रश्न था किसको याद है, क्या उत्तर था जी, जो क्या था भक्ति और ज्ञान का अंतर, तो भक्ति ज्ञान का रस किस में है, ज्ञान का रस माना जीवन मुक्ति का अनुभव। अब इस पर आप चिंतन करो, तो ये ज्ञान का रस है जो जीवन मुक्ति का अनुभव कराए, जैसे राजा जनक ने अनुभव किया सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या ज्ञान दिया अष्टावक्र ने, उसने कहा मुझे वो ज्ञान दो जो मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति मिले। तो वो घोड़े पर चढ़ रहा था, एक पैर घोड़े पर था और एक पैर धरती पर था अपना, एक पैर वो जो घोड़े का होता था पांव रखने का उस पर था और एक धरती पर था पैर। तो अष्टावक्र ने उनसे पूछा अभी आप कहाँ हो, अभी आप कहाँ हो, घोड़े पर हो या धरती पर हो, पर एक पैर धरती पर था और एक पैर घोड़े पर था, तो क्या कहे घोड़े पर है या धरती पर है। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, दोनों पर हूं और दोनों पर नहीं हूं। तो कहा बस यही जीवन मुक्ति है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। संसार में है पर संसार हमारे में नहीं है, है और नहीं है। जीवन में है तो भी मुक्ति की अवस्था है, दुखों से, रोगों से, शोकों से, कई प्रकार के जो आज दुनिया में बंधन है उन सब से मुक्त है, न्यारे है, न मैं न मेरा। तो जब इस प्रकार का हो तब कहेंगे सेकंड में जीवन मुक्ति। अब वो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे आती है, जब ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये ज्ञान का जब हम स्वरूप बनते हैं, ड्रामा का ज्ञान, ये स्वरूप बनना माना जीवन मुक्ति का अनुभव करना, क्योंकि ये सारा ज्ञान हमें जीवन मुक्ति का ही अनुभव कराता है। आत्मा का ज्ञान भी वही जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है, परमात्मा का ज्ञान भी जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है, कर्मों का ज्ञान भी जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है, और ड्रामा का ज्ञान तो पूरा ही जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। फुल स्टॉप लगा दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा और भी अच्छा होगा। तो बिंदु लग गया तो जीवन मुक्ति मिल गई ना। कोई कैसा भी व्यवहार करे, चलो हिसाब किताब पूरा हुआ, हिसाब किताब पूरा हुआ, जैसे ये सोचा बिंदु लग गया, बुद्धि शांत हो गई, तो ये जीवन मुक्ति स्थिति है ना, है और नहीं है। नहीं तो क्या होता है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कौन, ये कब, तो क्या क्यों के चक्र में ही लगे रहते हैं। तो रविवार की भी मुरली आपने सुनी ना, बाबा की मुरली चली, क्या कहते हैं, वाई वॉट हाउ। तो ये इंग्लिश शब्द यूज किए क्योंकि बाबा के आगे बहुत विदेशी बैठे थे, लेकिन दादी गुलजार बहुत सुंदर बताती है, जो क्या क्यों कौन कहाँ कौन क क करते वो को किसकी भाषा है, किसकी भाषा है, क क क क करना कौवे की भाषा। तो जो सारा दिन क्यों 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 क्या कैसे क्या क्या करता रहता है वो कौवे की तरह बोलता है। और बाबा कहते हैं वाई की बजाय कौ फ्लाई, हाउ की बजाय वो हाई बन हाउ, कैसे कैसे हवा हो जाएगा, तो उड़ो उड़ो, हाँ ऊपर चले जाओ, ये हाउ वाई ये सब मत करो। तो इसीलिए बाबा हमको वो महसूसता की शक्ति देते हैं, और यही ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा कैसे एक सेकंड में न्यारे हो जाते थे, एक सेकंड। एक प्रसंग याद आता है, मनोहर दादी बहुत सुनाती थी, क्योंकि मनोहर दादी के साथ भी हम बहुत रहे मधुबन में। तो दादी सुनाती थी कि कैसे ब्रह्मा बाबा के पास बैठी थी वो, और एक बहन आई, टीचर बहन थी, और बाबा को बहुत सुनाने लगी, बाबा मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, ये सेवा की, बाबा बहुत आए, हाँ बहुत VIPs आए, बस बोलती गई, और बाबा एकदम शांत, जैसे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि थोड़ा अभिमान था तो वो बोलती गई, अपनी महिमा गाती रही। तो बाबा ने, और उसने ये सब पत्र में भी लिखा था, सारा समाचार पत्र में दिया था, और जब पर्सनली मिलने आई तो फिर वही बातें सुनाई। अब बाबा ने उसको कैसे शांत किया, हम लोग क्या करेंगे, बस 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 बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, मत सुना, ऐसे हम लोग बोलेंगे ना, तो ये तो जैसे उनकी इंसल्ट हो गई ना, इंसल्ट कर लिया ऐसे शब्द बोल करके, बस 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 बहुत ज्यादा मत सुनाओ, बहुत बोलती हो तुम, कई बार हम ऐसे बोल देते हैं। लेकिन बाबा ने कितना रिस्पेक्ट रखा, बाबा ने कहा बच्ची ये सब आपने पत्र में लिखा है ना। हाँ बाबा मैंने पत्र में भी लिखा, बहुत अच्छी तरह से बाबा विस्तार से लिखा। बाबा ने कहा तो बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं, मना क्या मतलब, अब और मत बोलो। बाबा जानते हैं, कितना रिस्पेक्ट भी दिया और साथ साथ उसको रोका भी, नहीं तो कोई ऐसे कड़वे शब्द या रूखे शब्द बोल के भी रोक सकता है ना। परंतु रिस्पेक्ट भी दिया, प्यार भी दिया, और बस करो ये भी इनडायरेक्टली कहा। तो वो जैसे ही फिर बाबा ने उसको देखा, अब एकदम वो सहम गई और एकदम शांत हो गई। और अनुभव करने लगी कि देखो बाबा तो कितना उपराम है। हम दादियों को भी देखते थे, बड़ी दादी ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में थी, कितनी बातें दादी के आगे आती थी, कितनी बातें आती होगी, कितनी प्रॉब्लम सेंटरों की बातें। ब्रह्मा बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोतरी जाने, गुड़ कितना मीठा है वो एक तो गुड़ को पता, या तो उसकी जो थैली होती है ना उसको पता कि मेरे अंदर जो गुड़ है वो कितना मीठा है, या जो खाए बाकी गुड़ को पता, गुड़ की थैली को पता कि गुड़ मीठा कैसा है। तो कितनी बातें बाबा के पास आती है, तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा जाने कैसे कैसे बच्चे हैं, क्या क्या समस्याएं पैदा करते हैं, तो बाबा जाने अब सबको थोड़ी बताएंगे। तो इसीलिए पर बाबा कैसे न्यारे प्यारे रहते थे, फिर ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा का कार्य। तो दादी जी भी ऐसे ही करती थी, इतनी इस बातें आएगी, फिर दादी कहती थी मैं तो कुछ नहीं करती। हा? एक बार कई मीडिया वाले आए थे दादी जी से प्रश्न उत्तर कर रहे थे, दादी जी से पूछा आपकी इतने हजारों ब्रांचेस हैं, इतनी आपकी ब्रह्मा कुमारियां समर्पित हैं, कितने आपके आपकी सेवाएं हैं चारों तरफ, कितने देशों में हैं, तो आपको ये सब का तो पता ही होगा, तो आपको रात को नींद आती है? हाँ, आज किसी के दो चार दुकान भी होते हैं ना तो क्या होता है, इतनी चिंता होती है, चार छह बच्चे होते हैं तो भी कितनी चिंता होती है, और ये तो इतने सेवा केंद्र, इतने भाई बहने, इतनी सेवाएं, तो आपको रात को नींद आती है? तो दादी ने कहा क्यों नहीं आएगी नींद, और हम देखते थे दादी जी को कैसे दादी को नींद आती है। रात को हम दादी जी के पास जाते थे और दादी जी मुरली पढ़ती थी, रोज रात को मुरली पढ़ के सोती थी, तो हम जाते थे दादी जी के पास, दादी मुरली पढ़ती होती थी तो हम कहते दादी हम मुरली पढ़ेंगे, और फिर दादी जी सुनती थी और हम लोग पढ़ते थे, दादी को मुरली सुनाते थे जैसे, और सुनते सुनते कब दादी को नींद आ गई पता भी नहीं चला, एक सेकंड में। तो दादी कहती क्यों नहीं नींद आएगी, मैं तो ऐसे अनुभव करती हूँ, मैं बिस्तर पर लेटी ये तो जैसे शेष शैया है और भगवान की गोद में सो गई, कितनी देर लगेगी, सब चिंताएं रात को बाबा कोई दे देते हैं कि अपने साथ लेके थोड़ी रह सोएंगे, तो कैसे एक बच्चा बन जाओ बस बाबा की गोद में चले जाओ। तो मैं तो, और फिर कहा कि आप कैसे इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो दादी कहती मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, ये सब ये लोग करते हैं, जो और बड़ी बहनें बैठी थी सब ये लोग करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। यानी इतनी हल्की रहती थी इतना सब कुछ करते हुए भी, तो ये कैसे हुआ हल्कापन, क्योंकि वो मैं कर रही हूँ ये अभिमान कभी नहीं आया दादी को। तो हमने दादियों को देखा कैसे लास्ट में इतने न्यारे प्यारे होते गए, नहीं तो दादियां पहले सुनती थी, हाँ कई बातें होती थी, लेकिन जब दादी की स्टेज पे वो कर्मातीत संपूर्णता की स्थिति तक आई, ये होता था हम दादी को ये सुनाएंगे वो सुनाएंगे वो सुनाएंगे, लेकिन जैसे दादी के पास आते थे वो वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते थे कि दादी को कुछ वो संसार की बातें या कोई भी प्रॉब्लम सुनाना अच्छा भी नहीं लगता था। हम कहते थे दादी की स्थिति कितनी ऊंची है, ये छोटी छोटी बातें हम दादी को सुनाएं अच्छा भी नहीं लगता था, और भूल भी जाते थे क्योंकि स्थिति जितनी ऊंची, जैसे बाबा कहते हैं ना सामने कोई विघ्न हो पर आप ऊपर चले जाओ तो विघ्न क्या लगेगा, कैसा लगेगा विघ्न, मामूली सा लगेगा क्योंकि आप इतना ऊंचे हो गए। मिसाल भी हम देते हैं ना, कोई लकीर है आप वो लकीर, आपको उस लकीर को छोटा करना है तो कैसे करेंगे उस लकीर को छोटा, बिना टच किए बिना हाथ लगाए उस लकीर को छोटा कैसे करेंगे, हाँ उसके नीचे बड़ी लकीर लगा दो तो वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी, आपने कुछ भी नहीं किया पर आपने क्या किया, केवल बड़ी लकीर खींची। तो आप बड़े हो जाओ आप ऊंचे चले जाओ तो वो बात जो है वो गौण हो जाएगी छोटी हो जाएगी। अब आप बड़े कैसे होंगे, तो बाबा कहते एक सेकंड में उड़ती कला अनुभव करो, मैं आत्मा हूं और आत्मा रूप में देखो, तो देखो ऊंचे चले गए, दृष्टि वृत्ति शुद्ध पवित्र हो जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा ने ये किया, मम्मा ने ये किया, और हिसाब किताब तो सबके हैं। कल आज भी बाबा ने कहा हिसाब किताब तो अंत तक चलेंगे। योग से हिसाब किताब पूरे होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन जो इस जन्म में किए हैं ना वो तो अंत तक चुकतु होंगे। तो इसलिए कई पूछते हैं ना कि दादियों ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, तो फिर उनके साथ क्यों हिसाब किताब? सबके साथ है क्या? नहीं, 63 जन्म हमने कर्म किया, और जिसने थोड़े जन्म लिए तो उसने थोड़े पाप किए होंगे, और जिसने ज्यादा जन्म लिए थे उनके तो फिर ज्यादा ही कर्म है, तो फिर ज्यादा ही पाप होके हुए होंगे। तो हिसाब किताब तो कितना है सिर पर, तो वो हिसाब किताब तो चुकतु करना ही है, लेकिन साथ साथ बाबा कहते 21 जन्मों की कमाई भी करनी है। मानो 84 जन्मों का हिसाब आपको यहाँ ही अनुभव करना है। जो 63 जन्म जो पाप कर्म किया वो चुकतु करने का भी पार्ट है, और 21 जन्म के लिए जमा करने का भी अभी पार्ट है। जैसे किसी के ऊपर बहुत कर्जा हो, अब वो इतना उसको कमाना है जो कर्जा भी चुकतु करे और आगे की कमाई भी जमा करे। मानो 63 जन्मों का कर्जा चुकतु करना है और 21 जन्मों की कमाई जमा करनी है, तो कितना करना पड़ेगा? पूरा 84 जन्म, तो आप सोचो। तो बाबा कहते हैं बस इसलिए योग से पाप नाश होते हैं, हेल्थ वेल्थ मिलती है, ये सब है, लेकिन जो अंतिम जन्म के हिसाब किताब है वो यहीं चुकतु करने हैं। धर्मराज पुरी में नहीं लेके जाने हिसाब किताब, और यहां ही चुकतु करके आत्मा संपन्न संपूर्ण बन जाए। बाबा ने यही सिखाया, दादियों ने यही किया, और हम उनसे सीखते हैं सचमुच कैसे न्यारा प्यारा बनना होता है। तो महसूसता की शक्ति से संपूर्णता अंदर में महसूस करो। जो आपको पता होगा अभी जो मीटिंग हम लोगों की हुई एनुअल मीटिंग, उसमें भी हर साल की थीम बनती है, वो थीम के अनुसार सेवाएं होती है। तो इस साल की थीम है ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का ये साल है। यूनाइटेड नेशंस में हर साल कोई ना कोई साल मनाया जाता है, ईयर ऑफ मिलेट्स, ईयर ऑफ द ना ये फलाना, इसका साल, इसका साल। तो ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, तो सकारात्मक परिवर्तन का ये साल करना है। तो महसूसता कैसे आएगी? जब सकारात्मक परिवर्तन होगा, हमको बदलना है, हम औरों की अपेक्षा न करें, ये बदले, मुझे बदलना है, बस मुझे बदल करके उदाहरण बनना है दूसरे को बदलने के लिए। मैं जबरदस्ती किसको बदल नहीं सकता हूं, बदल नहीं सकती हूं, खुद को जरूर बदल सकती हूँ। मैनेजमेंट में हम क्या सिखाते हैं ना, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं ना, तो सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स में यही बताते हैं, सेल्फ को मैनेज करना है। अपने हम अपनी इंद्रियों को मैनेज करें, हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये हाथों से क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को मैनेज करना है। अपने मन के संकल्पों को मैनेज करना है, क्या सोच रहे हैं। फिर दूसरों का दिल हम दुखाएं नहीं, ये भी तो हमें करना है, क्योंकि बाबा ने कर्मों का ज्ञान तो बहुत दे दिया है। आप अगर दूसरों को दुख देंगे तो क्या होगा? आप दुखी होंगे। बाबा तो यहां तक कहते हैं जो दुख देगा वो दुखी होके मरेगा। तो कई कहते हैं बाबा श्राप देते हैं क्या? ये श्राप नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं अपने लिए, तो जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों को भी देना है। बस ये है महसूसता की शक्ति। इसलिए सुख दो सुख लो, तो आपको भी सुख अनुभव होगा। ये हो नहीं सकता आप दुख दो और आपको सुख मिले, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए सुख कैसे देंगे? अपनी सोच से देंगे, अपनी वाणी से देंगे, अपने कर्म से देंगे। हाँ, कैसे सुख देंगे? कोई चीज थोड़ी है भाई, लो ये टोली है, ये प्रसाद है, ये खाओ, ये सुख है, ऐसे तो नहीं है ना। तो सुख देना माना अपनी सोच से सुख देना, किसी के प्रति भी बुरा नहीं सोचना, किसी के प्रति भी बुरी दृष्टि नहीं रखना, घृणा नफरत ये सब नहीं करना, चाहे कैसी भी आत्मा हो। मैं हम रास्ते पर जाते ना तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अभी पता नहीं, अभी इतना नहीं सुनते, लेकिन पहले बहुत लिखा रहता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपने बुरी नजर रखी, आपको ऊपर ये जैसे आपको श्राप मिल गया, तेरा मुंह काला। लेकिन एक ट्रक के पीछे मैंने ये भी देखा लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला, माना वो चाहे कुछ भी कहे पर मैं उसको कैसे देखूं, तुम्हारा भी भला हो। चलो वो अगर देखा, पर मैं अगर अपनी शक्ति में हूं तो वो क्या कर सकता है, पर मैं ही कमजोर हूं तो उसकी बुरी नजर लग सकती है। हाँ, इसकी मुझे नजर लग गई, उसकी नजर लग गई, कितना डरते हैं लोग दुनिया में। लेकिन अगर हम स्ट्रांग हैं तो किसी की नजर नहीं लग सकती है, लेकिन हम संकल्प करते हैं तब कहीं वो नजर लग सकती है। हाँ, इसने मेरे पर वो बुरी दृष्टि डाली, इसका इसकी नजर अच्छी नहीं है, हाँ इसकी नजर लग गई मुझे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन उसकी उसके उसको हम डिफेम करें या उसके ऊपर दोष देने के, मैं शक्ति शक्तिशाली कितनी हूं, कितना, वो हम देखें ना। ये कैसा भी है उनको हम बदल नहीं सकते। तो महसूसता द्वारा संपूर्णता, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो दो प्रकार की महसूसता, एक है जो हमारी कमियां कमजोरियां उनको निकालने के लिए महसूस करो कि हाँ ये मेरी कमी है। अगर हम उस समय ये सोचते ये ऐसी है ये ऐसा इसीलिए मैं ऐसा हूं, ये कोई महसूसता थोड़ी है। पर मुझे क्या करना है, मैं कैसे बदलूं, वो देखना है। और दूसरी महसूसता है पॉजिटिव साइड, जो बाबा हमको इतने स्वमान देते हैं, वो स्वमान हम अपने अंदर महसूस करें। बाबा कहते तुम होली हंस हो, अब ये स्वमान बाबा ने दिया, आज बाबा ने आज की मुरली थी, तुम राज ऋषि हो, है ना, सान बाबा का वरदान, आप राज ऋषि हो, तो राजा भी हो तो ऋषि भी हो, ये दोनों अपोजिट है। राजा ऋषि थोड़ी होता, ऋषि राजा थोड़ी होता है। ऋषि माना जैसे वैरागी, और राजा माना विलासी, अगर उस हिसाब से कहीं तो। लेकिन सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऋषि समान है, शुद्ध पवित्र है, मेरा कुछ नहीं है। इसको कहेंगे सच्चा ज्ञानी तो आत्मा, राजा जनक की तरह जीवन मुक्ति है और नहीं है, है और नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है, और ये संपूर्णता की निशानी है। तो ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान से कैसे ये अनुभव करते, ये टेस्ट हमें मिलती, ये रस मिलता है, जीवन मुक्ति का रस। अगर वो रस न मिले, इसका मतलब वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है, भावना है। भावना अच्छी चीज है, भावना का भाड़ा भगवान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन केवल भावना हो और अंधश्रद्धा के रूप में हो तो वो तो नुकसान करेगी ना। श्रद्धा भावना आस्था विश्वास ये बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन उसमें अंध जोड़ा जाए तो अंधविश्वास अंधश्रद्धा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो तो हमें अंधकार में ले जाएगा ना, अंध हो गया ना, अंधा हो गया, वो हमें अंधकार की ओर ले जाएगा। इसलिए ज्ञान भी हो, विवेक भी हो, समझ भी हो, त्रिकालदर्शी स्थिति जिसको आज बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी स्थिति हो, इस कर्म का क्या फल होगा वो पहले से ही सोचो, कोई बात नहीं अभी तो करो, आगे देखा जाएगा, नहीं दुनिया में ऐसे कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट, जो बीत गया वो हिस्ट्री, फॉरगेट इट, भूल जाओ, और जो फ्यूचर में भविष्य में आना है वो तो मिस्ट्री है, वो तो पता ही नहीं क्या होगा। आप वर्तमान में जियो, खाओ पियो मौज करो, वर्तमान में जियो। लेकिन वर्तमान का भी आधार हमारा भूत है और इसी वर्तमान के आधार पर भविष्य बनेगा। तो तीनों काल बुद्धि में हो, केवल वर्तमान नहीं। वर्तमान ऐसे ही नहीं बना, आज हम इस स्थिति पर हैं, यहां बैठे हैं और भगवान के महावाक्य सुना रहे हैं, तो जरूर पास्ट में हमने वो अनुभव किया है ना। अगर किया ही नहीं ऐसे ही थोड़ी कौन मुझे बैठने देगा, बैठने देगा भाई हमें? क्योंकि उठो 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 यहां से। आज की इसकी भाषा अगर अच्छी नहीं है, कड़वे शब्द बोलता है और दुख देने वाले शब्द बोलता, उनको कहेंगे क्या तुम भाषण करो? कौवा सामने काका काका कर रहा है तो हम सुनना चाहेंगे क्या? भगाएंगे। तो वही कौवा वही कोयल, और कोयल हो तो कितना अच्छा लगता है। तो मीठी वाणी बोल कहा जाता है ना, मीठी वाणी बोल। तो सचमुच हमने देखा है कि जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपनी कमजोरियों को निकालते हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, तो हमारे अंदर ये सकारात्मक परिवर्तन आता है। कई कहते संस्कार बदल नहीं सकते, हम कहते क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ कई कहते हैं कि क्या करें, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये संस्कार है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे आदि संस्कार कौन से हैं वो याद करो। ये तो वर्तमान के संस्कार है, आपके असली संस्कार क्या है? आत्मा तो अपने असल स्वरूप में कितनी शुद्ध है वो याद करो ना। और फिर भविष्य में फिर ऐसे बनने वाली है वो याद करो ना। ये वर्तमान तो आपका थोड़े समय के लिए, पर वो आदि और वो अनादि स्वरूप को याद करो, वो आपका कितना श्रेष्ठ है। तो वो तब अनुभव हो जब हम हमारे अंदर उस प्रकार की वैराग्य वृत्ति भी हो। ब्रह्मा बाबा को कैसे वैराग आया? अभी मैं नीचे थी, सिंधी लोग बहुत आए थे, मैं बता रही थी ना सिंधियों का, आज वो आए थे सब घूमने के लिए। तो उसमें एक था जो अपना परिचय दिया, उसने ब्रह्मा बाबा का जो पार्टनर था, जिसके साथ बिजनेस था ब्रह्मा बाबा का, उनका पर पोता या पोता या पर पोता, तो वो बता रहा था कि कैसे उनके पिताजी उनके दादाजी कहते थे ब्रह्मा बाबा की क्या बिजनेस थी, इतने बड़े बड़े हीरे हाँ बाबा के होते, वो भी कान में हीरा पहन करके घूम रहा था हाँ सच्चा हीरा, कहता एक एक हीरा ये 1,00,000 रुपए का है, वो कान में पहना हुआ था। तो बता रहा था कैसे उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की जो बिजनेस थी बाबा के साथ, तो इतना बाबा का रिच हाँ वो बिजनेस, लेकिन बाबा ने कैसे एक धक से छोड़ा। शिव बाबा ने कहा बस ये कन्याओं माताओं के आगे समर्पित कर दो, और बाबा ने कुछ नहीं सोचा, वो हीरे बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जिसको कहते हैं, एकदम लीनियर चेंज, ऐसे नहीं ऐसे थोड़ा नहीं, सीधा परिवर्तन। और वो जो परिवर्तन ब्रह्मा बाबा ने किया, वो एक बीज डाला, उस बीज से आज ये वट वृक्ष, इतना बड़ा कार्य ये संस्था आगे बढ़ी। तो ब्रह्मा बाबा का कितना मान हुआ, आदि पिता कहलाए, और हम सब उनकी मुख वंशावली, नहीं तो बहुत बड़े व्यापारी थे। तो हम बच्चे भी उनके कदमों पर चलें, समय को देखें, समय को पहचानें। कई कहते बाबा तो कहते ही रहते, ये बाबा ने क्यों कहा? आदि में यही कहा, जैसे यज्ञ की स्थापना हुई बाबा ने सबसे पहले यही कहा, अगली दिवाली नहीं आएगी। कई कहते आप लोगों ने कहा विनाश होगा, विनाश तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं। अरे बाबा ने पहले साल ही यही कहा, अगली दिवाली नहीं आएगी, और 86 दिवालियां बीत गई है ना, 86 साल हो गए संस्था को, और यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने यही कहा। अगली दिवाली नहीं आएगी माना एक साल में विनाश खत्म ना, एक साल। फिर बाबा ने कहा कि साथ रहेंगे और साथ जाएंगे, तो कईयों ने सोचा कि कोई शरीर नहीं छोड़ेगा पर साथ ही सब चले जाएंगे वतन में, इस परम धाम में जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, अगली दिवाली तो आएगी नहीं, और इसलिए सब छोड़ के भागे या जो कुछ किया, एकदम नशा चढ़ गया, साक्षात्कार हुए। और 14 साल भट्ठी चली, और उन 14 सालों में बाबा ने कैसे बच्चों को तैयार किया कि तुम महाराजाओं से मिलोगे, उनको तुम क्या ज्ञान दोगे, तुम राष्ट्रपति से मिलोगे, प्रधानमंत्री से मिलोगे, रानी से मिलोगे। तो वो कहते थे बाबा ये क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ हम रानी से मिलेंगे, कहाँ हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, अभी तो हमको तो जाना है। बाबा कहते नहीं, आप उनको क्या सुनाओगे वो भी आप सोचो। तो बाबा ऊंची ऊंची बातें करते, और ये बस ये कहा कि बस अब घर जाना है, अगली दिवाली नहीं आएगी। और कैसे ये कार्य चला 14 साल, फिर उन 14 सालों में कितना परिवर्तन आया दुनिया में, ये भी सबने देखा है ना, पता है ना, 1937 से लेकर 1950 जो 14 साल ये भट्ठी में रहे, उन्हीं 14 सालों में कितना परिवर्तन आया। सबसे पहला परिवर्तन क्या आया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, 6 साल दूसरा विश्व युद्ध हुआ और लाखों लोग मारे गए। हम रशिया गए थे कुछ साल पहले, तो वहां बता रहे थे, वहां ना बूढ़ी बूढ़ी औरतें बहुत थी, बूढ़ी बूढ़ी औरतें और पुरुष कम, बूढ़ी औरतें बहुत ज्ञान में। तो हमने कहा कि इनके पति भी होंगे, इनके बेटे भी होंगे, तो कहा कि न पति है न बच्चे है, बेटे हैं और गवर्नमेंट ही उनकी पालना कर रही है। तो कहा कि इनके जो पति थे, इनके जो बच्चे थे, वो सब दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में सबको भर्ती किया गया था, तो इसीलिए वहां पुरुष कम है, बूढ़ी औरतें बहुत है रशिया में क्योंकि बहुत मारे गए, लाखों लोग मारे गए रशिया में क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में बहुत कुछ हुआ। तो बाबा से पूछते थे बाबा क्या यही विनाश है, तो बाबा कहते नहीं ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर दिखाते ना तो लगता है कि वो फिल्म कैसी होगी, ट्रेलर ही ऐसा है, तो ये तो केवल ट्रेलर है, विनाश तो बहुत भरी चीज होगी। फिर उसके बाद फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, पार्टीशन हुई, उसमें रक्त की नदियां बही, खून की नदियां चारों ओर, हजारों लोग ऐसे मारे गए, कत्लेआम हुए, खून ही खून सब तरफ था। तो भी समाचार मिला तो बाबा से पूछे बाबा क्या ये विनाश है, बाबा कहते थे नहीं ये भी ट्रेलर है, ये रिहर्सल है, रक्त की नदियां बहनी है भारत में, अभी उसकी तैयारियां जैसे हो रही है ना, आपस में कैसे भिड़ रहे हैं, ये सब निशानियां हैं। तो अणु युद्ध की भी रिहर्सल देखी, ग्रह युद्ध की भी रिहर्सल देखी और प्राकृतिक आपदाओं की भी रिहर्सल देखी। बहुत उस समय भूकंप आए, सुनामी आया, बहुत कुछ आया। क्वेटा शहर है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है, वो पूरा का पूरा शहर धरती में समा गया था, पूरा का पूरा शहर ये इसमें भूकंप में, इतना आप सोचो, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सुनामी, मतलब ये बहुत कुछ हुआ। तो भी बाबा कहते थे ये तो रिहर्सल है, ये तो ट्रेलर है, तो जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा। इसलिए तो बाबा को एक सेकेंड में वैराग आ गया, क्योंकि अब देखा ना, साक्षात्कार किया, तो ये बेहद का वैराग्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी हम बाप समान बन सकेंगे। वो महसूसता की शक्ति उसके लिए बहुत जरूरी है। तो बाप समान बनने के लिए ये सारी जो भी बाबा हमें स्थिति बताते हैं, जो इशारे देते हैं, हम कितना कर रहे हैं, हम अपने आप से पूछे। तो यहाँ आप आए हो, अवश्य ये लक्ष्य रखा है, हम तपस्या करके अपने संपूर्ण संपन्न स्थिति को, बाप समान की स्थिति को प्राप्त करना, इस लक्ष्य को आप यहाँ जरूर बनाना, ठीक है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद करते हैं।